जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरी वरधारी जय
राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
यशोदानंदन ब्रज जनरंजन
यशोदानंदन ब्रज जनरंजन
यशोदानंदन ब्रज जनरंजन
यशोदानंदन ब्रज जनरंजन
यमुना तीरवन
तीरवन चारी
यमुना तीरवन चारी
यमुना तीरवन चारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय राधा
रंजन
यशोदानंदन ब्रज जनरंजन
यशोदानंदन ब्रज जनरंजन
यशोदानंदन ब्रज जनरंजन
यमुना तीरवन चारी
यमुना तीरवन चारी
यमुना तीरवन चारी
यमुना तीरवन चारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
सभी लोग
कृष्ण कृष्णा हरे हरे
हरे राम
राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Ram
Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Ajanulambit bhujo kanaka vadato
Pandurangavitala
Pandurangavitala
पंढरीनाथ विठ्ठल
पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल
पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल
भज 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 भजो 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 मना पांडुरंग विठ्ठला
भजो 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 मना पांडुरंग विठ्ठला
पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला
पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला
पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल
पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल
भज 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 मना पांडुरंग विठ्ठल
भज 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 मना पांडुरंग विठ्ठल
भजो 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 मना पांडुरंग विठ्ठल
भजो 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 मना पांडुरंग विठ्ठल
पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल
पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल
पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल
पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल
भज 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 मना पांडुरंग 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 विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल
भजो भज भज मन पांडुरंग विठ्ठल
भजो भज भज मन पांडुरंग विठ्ठल
भज भज मन पांडुरंग विठ्ठल
ओ भज 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 मन पांडुरंग विठ्ठल
पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल
पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल
पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल
पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल
भज 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 विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल
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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठल भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठल
भजो भजो मन पांडुरंग विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल
विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल
विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल
विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल
भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठल
भजो
भजो भजो मन पांडुरंग
विठ्ठल
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
जय सचिनंदन जय सचिनंदन
जय सचिनंदन जय
सचिनंदन
जय सचिनंदन जय सचिनंदन
जय सचिनंदन जय सचिनंदन
जय सचिनंदन जय सचिनंदन
जय सचिनंदन गौर हरि जय जय प्रभु 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 प्रभु
जय जय प्रभु 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 जय प्रभु
श्री गौर निताय की शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रमाण ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय
भगवते चैतन्य चंद्राय
ओम नमो 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 भगवते चैतन्य चंद्राय
वंशी विभूषित करा नवनीर रामा पीतांबर दरुण बिम बफल धरोष्ठा पूरणेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा चल खेलोत्तम धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ माने योगी मधुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव उपलक्ष में इस सत्संग कार्य में हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ साक्षात भगवान श्री चैतन्य चंद्र का अभिषेक करने का और उनका दर्शन करने का। वेदों में वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति जहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो रहा हो और उससे कई किलोमीटर दूर बैठा हो, कई किलोमीटर दूर बैठकर केवल सुन लेता है कि वहां पर अभिषेक हो रहा है, केवल अभिषेक नाम शब्द सुनने पर उनके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। केवल अभिषेक नाम सुनने पर सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। भक्तों कल्पना करो कि यदि कोई व्यक्ति अभिषेक का दर्शन कर ले और अपने स्वयं इन हाथों से भगवान का अभिषेक कर ले, तब उनके हजारों हजारों करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाए, इनमें कोई संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, वेदों में तो यहां तक कहा गया है कि भगवान का अभिषेक करने से भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो बहुत सुंदर मौका इस सोलापुर में इष्ट देव प्रभु के द्वारा हम सबको प्राप्त हो रहा है और मेरा सौभाग्य है कि आज के इस पवित्र दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के उपलक्ष में कुछ कथा श्रवण कराने का मौका प्राप्त हुआ है। हमने आज सुबह इसी मंदिर में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के, चैतन्य महाप्रभु के अवतार का अंतरंग कारण और बहिरंग कारण जाना। राज इष्टदेव प्रभु की इच्छा है कि अभी चैतन्य महाप्रभु के जन्म की कथा कही जाए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की लीला अपार है, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है और भगवान की कथा अनंत है। अनंत शेष अपने अनंत अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान के अनंत कथा का वर्णन कर रहे हैं, परंतु आज तक भगवान की कथा को शेष नहीं कर सके। भगवान की कथा अनंत है और चैतन्य महाप्रभु की लीला भी अनंत है। इसे एक डेढ़ घंटे में कहना बहुत मुश्किल है, परंतु फिर भी चैतन्य महाप्रभु की लीला का सार जो है आज हम श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु परम करुणा वरुणालय अवतार है। हमने सुबह चर्चा किया, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के अनंत अवतार है, परंतु भगवान का जो यह चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार है अद्भुत है। सबसे पहली अद्भुतता यह है कि और सब अवतारों में भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, और सब अवतारों में भगवान अपनी भगवत्ता प्रकट करते हैं, परंतु इस अवतार में भगवान भक्त बनकर आए। भगवान भगवान बनकर नहीं, भक्त बनकर इस पृथ्वी पर आज से 524 वर्ष पहले अवतरित हुए। यह पहला आश्चर्यमय कारण है। और दूसरा, इसके पहले भगवान ने अनंत अवतार लिए, नरसिंह, वामन, वराह इत्यादि, और साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में भी आए, परंतु भगवान ने किसी को अपनी प्रेम भक्ति का दान नहीं किया। भगवान नरसिंह देव आए तो हिरण्याकश्यपु असुर का वध किया, उसे भक्ति नहीं प्रदान की। भगवान परशुराम आए, 21 बार इस पृथ्वी पर क्षत्रियों को विहीन किया, मारा काटा, परंतु अपनी भक्ति प्रदान नहीं की। भगवान राम आए, बाली, खर, दूषण, त्रिशरा, बाली इत्यादि को मारे, परंतु उन्हें अपनी भक्ति नहीं दे पाए। साक्षात बजेंद्र नंदन कृष्ण भी आए, पुतना, अघासुर, बकासुर, कंस इत्यादि राक्षसों का वध किया, परंतु अपनी प्रेमा भक्ति नहीं दे पाए। परंतु भगवान का एक अद्भुत स्वरूप, एक विलक्षण अवतार इस कलयुग में, भगवान आए, असुरों को मारा नहीं, असुरों के सामने भगवान खड़े रहे, अपने गले मिलाकर अपनी प्रेम भक्ति का दान की। यद्यपि चाहते तो भगवान वध कर सकते थे, परंतु भगवान की असीम करुणा, करुणा उमड़ पड़ी, और करुणा के कारण भगवान ने अपनी स्वभक्ति, प्रेम भक्ति का दान किया, प्रदान किया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का यह अद्भुत अवतार है, और भक्तों, चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात बजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण ही है। वेदों में सैकड़ों प्रमाण दिए गए हैं कि कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से इस कलयुग में प्रकट हुए, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, उसकी कथा आज हम श्रवण करेंगे। आज से 524 वर्ष पूर्व इस कलयुग में घोर पाखंड छा गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कथा तीन लोगों ने वर्णन की है। एक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की कथा कही। एक है वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की कथा कही है। और एक है लोचन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य मंगल में चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन किया है। तो यह वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा है, यह और कोई नहीं, वेदव्यास जी के ही अवतार है। वेदव्यास जी कलयुग में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में अवतरित हुए। वहां द्वापर युग में वेदव्यास जी भगवान श्री कृष्ण की लीला का ग्रंथ भागवतम की रचना की, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला रचित चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना की। तो भक्तों, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु के जन्म और कर्म की लीला का वर्णन करते हैं। और भक्तों, हम सब गौड़ीय वैष्णव हैं, और हम सब गौड़ीय वैष्णवों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। कलयुग में यदि भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य चाहिए। बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कलयुग में कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। और गीता में भी भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान के जन्म और कर्म हमारे समान नहीं है। हमारा देह पंच महाभूत से जड़ शरीर है, परंतु भगवान का देह चिन्मयी है। तो भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है। दिव्य का अर्थ होता है, दिवी का अर्थ होता है आकाश। जो आकाश से सिद्धांत के परे है, अर्थात जो ये भौतिक जगत के नियमों में बंधे नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दिव्य कहा जाता है। भगवान का जन्म विलक्षण है, दिव्य है। और यदि कोई व्यक्ति भगवान के जन्म को जान लेता है तो कहते हैं त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति। हे अर्जुन, वे इस देह को छोड़कर फिर से इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत की फजीहत में, जंजाल में वापस नहीं आता है। इस भौतिक जगत में केवल दुख ही दुख है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति दुख ही भोगता है। परंतु यदि कोई भगवान के जन्म और कर्मों को जान लेता है तो पुनः पुनः माता के घर में वह आ नहीं सकता है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, उस माता के गर्भ में आना और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख को भोगतना, यह सब टल जाता है यदि कोई भगवान के जन्म के बारे में ठीक से जान लेता है। तो आइए आज हम भगवान के जन्म के बारे में जानेंगे, और वह भी चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बारे में। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को समझना आसान है, यद्यपि कृष्ण को समझना भी इतना आसान नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेशु। सहस्त्रेशु का अर्थ होता है हजार, करोड़, और सहस्त्र का अर्थ अनंत भी होता है। कहते हैं अनंत अनंत मनुष्यों में से मनुष्याणाम सहस्त्रेशु कश्चित, कोई एक विरला ही मुझे जानने का यत्न करता है, प्रयास करता है, जानता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को 10 अश्वमेघ घाट पर शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे रूप, एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्षत जीव करये भ्रमण। इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव है। पद्म पुराण में वर्णन है जलजा 9 लक्षाणी, जल में पानी में 9 लाख प्रकार की योनिया है, 9 लाख प्रकार के जीव है, 9 लाख प्रकार है, फिर भी एक प्रकार में करोड़ों करोड़ों जीव हो सकते हैं। जलजा 9 लक्षाणी, पानी में 9 लाख प्रकार के, और स्थावरा लक्ष्य विशंति, ये जितने भी पेड़ और पौधे देख रहे हैं ये 20 लाख प्रकार के हैं, और क्रिमिया रुद्र संख्या का, गटर में और छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, चींटी कीड़े मकोड़े इत्यादि, ये 11 लाख प्रकार के जीव हैं। और पक्षीनाम 10 लक्षाणाम, ये उड़ने वाले जो पक्षी हैं वे 10 लाख प्रकार के हैं, तोता मैना चिड़िया कबूतर इत्यादि। आप लोग कहेंगे हम देखते तो नहीं है, हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, परंतु हम नहीं देख सकते हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि यह नहीं है। शास्त्र में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि जल में 9 लाख प्रकार के जीव, 20 लाख प्रकार के स्थावर जो पेड़ पौधे इत्यादि, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, और 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले। यद्यपि हमें दिखते नहीं है, आप यह समझो कि हम और आप बैठे हैं, हमारे बीच में अनंत जीव घूम रहे हैं, परंतु हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो साइंस पढ़े हैं वे जानते होंगे, माइक्रोस्कोप यदि लगाकर देखो तो वह दिखाया जा सकता है। तो हमारी आंखों से यदि हम देख नहीं सकते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह नहीं है। केवल इस पृथ्वी में ही नहीं, इस पृथ्वी के ऊपर जन लोक मर लोक तप लोक सिद्ध लोक ब्रह्म लोक, और नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल तक अनंत अनंत जीव भ्रमण कर रहे हैं। तो आपने गिनती की, 9 लाख प्रकार के जल में, 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे, 11 लाख प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले, और पद्म पुराण में कहा गया है 30 लक्षाणी पशव, 30 लाख प्रकार के 4 पैर पर चलने वाले जीव है, 80 लाख के हो गए, और 4 लक्षाणी मानुष, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। तो इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव है, उसमें मनुष्य की संख्या बहुत कम है, बहुत कम। और उस बहुत बहुत कम मनुष्यों में से प्रायः कुछ लोग सभ्य मनुष्य है, नहीं तो ऑलमोस्ट आदिवासी के समान है। किस प्रकार से जीना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कौन है, हु एम आई, व्हाट इज गोल ऑफ माय लाइफ, कुछ नहीं पता है। आदिवासी के समान वे मांस भी खाते हैं, कुत्ते को भी खाते हैं, सुअर को भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज कहते हैं कि संसार में भगवान ने सबको अलग अलग भोजन दिया है और उस भोजन के अनुसार अलग अलग शरीर दिया है। जैसे शेर को और सिंह को, सिंह के शरीर में बहुत छोटी आंतर होती है और उसका दांत जो होता है तीक्ष्ण होता है क्योंकि उसे मांसाहार बनाया गया है। भगवान ने निश्चित किया है कि शेर और सिंह को मांस खाना है, शेर और सिंह केवल मांस ही खाता है। भगवान ने निश्चित किया है कि गाय को केवल शाकाहारी, वे मांस नहीं खाएगी, चिड़िया केवल दाना चुगेगी। तो आप देखिए भगवान के नियम का फॉलो, भगवान के नियम का पालन सभी पशु लोग कर रहे हैं। सिंह जो है, शेर जो है, मांस ही खाएगा, घास कभी नहीं खाएगा, आपने देखा, कभी नहीं। गाय जो है केवल घास ही खाएगी, मांस कभी नहीं खाएगी। चिड़िया जो है वह दाना ही खाएगी, मांस नहीं खाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी बन गया है जिसे कुछ भी चलता है, रोटी भी खाता है, घास भी खाता है, मांस भी खाता है, कुत्ता भी खाता है, सुअर भी खाता है, सब कुछ चलता है। वास्तव में यह सब खाने वाला मनुष्य मनुष्य नहीं, आदिवासी के समान है। महाभारत प्रमाण है, आहार निद्रा भय में तो नमच सामान्य एतत् पशु भैर नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मे न विहीन पशु भैर समान। धर्मे न विहीन, धर्म के बिना यह मनुष्य मनुष्य नहीं पशु के समान है। येषा न विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगार चरन्ति। जो लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करके भजन नहीं करते हैं वे तो मनुष्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पैंट शर्ट शूट बूट में है, परंतु मनुष्य रूपेण मृगार चरन्ति पशु के समान। समझ लो पशु ही पैंट शर्ट पहन के आ गया है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भजन नहीं करने वाले मनुष्य नहीं, वे तो पशु के समान है। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में यहां तक कहते हैं कि जिन हरि हृदय भगति नहीं आनी, मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, जिन हरि हृदय भगति नहीं आनी, जीवन शव समान सो प्राणी, उसका जीवन शव के समान है, मरे हुए मर्दे के समान है। बताइए मरे हुई लाश के पास कोई बैठना चाहेगा? गोस्वामी जी कहते हैं भजन नहीं करने वाला मरे हुई लाश के समान है। सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं यद्यपि वह सांस ले रहा है परंतु वह जीवित लाश के समान है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया और उसे शमशान में लेकर जा रहे हो, राम बोलो भाई राम, या यहाँ सोलापुर में जो भी बोलते होंगे, क्या बोलते हैं जो भी बोलते होंगे, परंतु लेकर जाते हैं और बीच रास्ते में यदि वह शव बैठा हो गया तो सब लोग खड़े रहेंगे, सब लोग वहां से भाग जाएंगे। शव के पास कोई नहीं खड़ा रह सकता है। ठीक उसी प्रकार जो भजन नहीं करता है वह शव के समान है, और जो भजन नहीं करता है उसके पास बैठना नहीं चाहिए, खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो भजन नहीं करने वाला व्यक्ति पापी है। मैं यह कह रहा था कि संसार में अनंत अनंत जीव है परंतु प्रायः लोग आदिवासी के समान है, सभ्य बहुत कम है। और सभ्य में से भी वेदों को जानने वाले तो बहुत कम है, और वेदों को जानने वाले में भी वेदों को मानने वाले उसमें भी कम है, और वेदों को मानने वाले में भी कृष्ण की भक्ति करने वाले ये तो बहुत कम है। एक तो ऑलरेडी मनुष्य की संख्या कम है और उसमें भी कृष्ण को जानने वाले सहस्त्रनाम मनुष्येषु कश्चित् कश्चित् यति सिद्ध्यते, कोई एक विरला ही, अरबों अरबों में से कोई एक विरला ही मेरी भक्ति करता है, गीता का यह कथन है। तो भगवान हजारों हजारों में से कोई एक कृष्ण को जान सकता है, और हजारों हजारों कृष्ण को जानने वाले में से कोई एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को जान सकता है। चैतन्य महाप्रभु को जानना यह आसान बात नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रछन्न अवतार है, छद्म अवतार है, छुपे वेश में इस संसार में अवतरित हुए, भक्त बनकर आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु किस स्थिति में जन्म लिए, किस स्थिति में अवतीर्ण हुए, यह कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह कथा प्रारंभ करते हुए वृंदावन दास ठाकुर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर। हे गौर सुंदर, हे चैतन्य महाप्रभु, हे निमाई, मेरे पर कृपा करो, आशीर्वाद दो, जिससे मैं आपके जन्म की कथा कह सकूं। वास्तव में भगवान को प्रणाम किए बिना इस संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता है। और चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि इस संसार में सिद्धांत का सागर विशाल है, सिद्धांत सागर के समान है, और इस सिद्धांत के सागर को पार करना बहुत मुश्किल है, परंतु यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए तो एक मूर्ख, एक बालक भी सिद्धांत के सागर को आसानी से पार कर सकता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज उन्हीं के जन्म की कथा हम आपको सुना रहे हैं। वैसे तो बहुत यह कथा बड़ी है, कम से कम 300 प्यार हैं, 300 बंगला श्लोक हैं। यदि प्यार के अनुसार चला तो एक श्लोक में एक मिनट भी यदि ले लिया तो 300 मिनट हो जाएगी, 3-4 घंटे निकल जाएंगे। परंतु आप संक्षिप्त में ही समझिए कि यह कथा आज से 524 वर्ष पूर्व की है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। 524 वर्ष पूर्व इसी भारत में, पहले यह पूरी पृथ्वी को भारत कहा जाता था, कुछ लोग जानते होंगे, यह पूरी पृथ्वी को ही भारत संज्ञा दी जाती थी, और इस पृथ्वी में हस्तिनापुर अर्थात दिल्ली की गादी पर जो राज करता था वह पूरे दुनिया पर राज चलता था उसका। परंतु धीरे 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 यह दुनिया का जो भारत था, धीरे धीरे कटिंग होते 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 दुनिया में एक छोटा सा नक्शा बनकर रह गया। इसी भारत की यह बात है, इस भारत में पश्चिम बंगाल में नवद्वीप मायापुर नाम के धाम में, वहां की यह बात है। कहते हैं कि उस समय बहुत भीषण स्थिति हो गई थी, सब लोग धर्म कर्म भूल चुके थे, कोई भगवान की भक्ति नहीं करता था, भगवान को कोई नहीं जानता था। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि उस समय ऐसी स्थिति आ गई, कहते हैं कि कलयुग के अंत में जो स्थिति आने वाली थी वह कलयुग के प्रारंभ में आ गई। कलयुग के प्रारंभ में ही सब लोग अपना धर्म भूल चुके और सब लोग वेद और शास्त्र को भूल चुके। वास्तव में ये वेद और शास्त्र मनुष्य के लिए बनाए हैं, और यदि कोई वेद और शास्त्र का अध्ययन करता है, पठन करता है, तो वे समझ सकता है कि किस प्रकार से हमें मनुष्य जीवन जीना चाहिए और मनुष्य जीवन प्राप्त करके किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। और तो बात आ गई है, इसलिए मैं आपको बता दूं, इस संसार में आज सब लोग दुखी हैं, ऐसा कोई नहीं है जो सुखी नहीं है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यही है कि सब लोग शास्त्र को भूल गए हैं, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन व्यापन नहीं कर रहे हैं। भगवान ने जब यह सृष्टि बनाई, मनुष्य को बनाया, तो उसके साथ साथ वेद और शास्त्र का निर्माण किया कि इस वेद और शास्त्र को पढ़कर यह मनुष्य ठीक से मनुष्य जीवन जी सके और भगवान के धाम को प्राप्त हो सके। परंतु सब लोग संसार में शास्त्र को भूल गए हैं। मैं दृष्टांत देता हूं, जैसे आपको एक टीवी खरीदना हो और टीवी खरीदने के लिए शोरूम में गए और सोनी का टीवी आप खरीद लिए, सोनी कंपनी का। यदि आप टीवी खरीदते हो तो टीवी के साथ साथ एक मैनुअल दिया जाता है किस प्रकार से उस टीवी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने टीवी तो खरीद लिया, पर आप इतने बुद्धिमान होंगे तो आपने कहा कि आप मैनुअल अपने पास रखो, मैं केवल टीवी ही लेकर जाऊंगा। वो व्यक्ति टीवी घर पर लेकर आया, जैसे ही शुरू किया तो चैनल घुमाने के लिए कैसे सेट करना चाहिए उसे पता नहीं चला, क्योंकि मैनुअल तो वो घर पर लेकर नहीं आया। फिर कैसे भी करके टीवी में उंगली करने लगा और उंगली करते करते पहले ही दिन में उस टीवी को बिगाड़ दिया। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में चल रहा है। जब भगवान ने हमें बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, तो पृथ्वी के साथ एक मैनुअल बनाया और भगवान ने कहा कि इस मैनुअल के अनुसार यदि आप अपना जीवन बिताओगे तो बहुत सुखी होकर जीवन बिता पाओगे और अंत में मेरे पास आ जाओगे। परंतु हम इस मैनुअल को छोड़ दिए और बस बिना मैनुअल के ही हम हमारा जीवन जी रहे हैं। वास्तव में मैनुअल और कुछ नहीं, शास्त्र है। और इस संसार में सब लोग शास्त्र को भूल गए हैं और अपनी तरह अपने आप अपना जीवन चला रहे हैं। फिर वह टीवी की तरह नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे वह टीवी बिगड़ गया वैसे हमारा जीवन बिगड़ गया है। शास्त्र के अनुसार यह जीवन यापन करना चाहिए। तो उस समय संसार में 524 वर्ष पूर्व शास्त्र को भूल गए और कुछ लोग शास्त्र को, वेदों को पढ़ते थे परंतु वेदों का गलत अर्थ लेते थे। कहते थे कि सबसे बड़ी भक्ति है कि काली देवी की उपासना करना और उसे बकरे की बलि चढ़ाना। वास्तव में यह काली देवी को प्रसन्न करना नहीं था, वे स्वयं बकरा खाने के लिए काली देवी का के नाम का बिल बनाते थे कि काली देवी को बलि चढ़ा रहे हैं और काली देवी को चढ़ाकर उसका प्रसाद हम लोग खाएं। वास्तव में ये काली इत्यादि जितनी भी देवी हैं ये सब भगवान की शुद्ध भक्त है और भगवान के शुद्ध भक्त की भगवान के शुद्ध भक्त की बात छोड़ दीजिए। भगवान का आज का कोई साधारण भक्त को भी यदि आप मांस की बात दूर रही, प्याज और लहसुन भी देंगे तो भी वह नहीं खाएंगे। आज का साधारण भक्त भी मांस नहीं खाएगा। काली इत्यादि तो भगवान की शुद्ध भक्त है, वे कैसे खा सकते हैं? लोग इसका गलत अर्थ लेकर काली इत्यादि देवी को बलि चढ़ाते हैं और देवी देवताओं के नाम पर अपनी इंद्र तृप्ति करते हैं। तो 524 वर्ष पूर्व सब लोग देवी को बलि चढ़ाते थे और अपनी इंद्र तृप्ति करते थे। इसी के साथ साथ लोगों के पास धन तो बहुत था परंतु अपना सारा धन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपना सारा धन अपने पुत्री और पुत्र के विवाह में इस्तेमाल करते थे, भगवान का भजन और भगवान के दान में इस्तेमाल नहीं करते थे। तो बहुत भीषण स्थिति आ गई थी। कोई भगवान के नाम को, भगवान के नाम को, भगवान की लीला को नहीं जानता था। सब लोग दुष्टाचार करते थे, दुष्ट व्यवहार करते थे। इस प्रकार की स्थिति चल रही थी और इसी स्थिति में नवद्वीप में, कहा जाता है कि उस समय नवद्वीप नाम का जो शहर था विद्या का नगर था। बड़े बड़े लोग विद्या ग्रहण करने के लिए नवद्वीप में आते थे, बंगाल में। कहते हैं कि विद्या प्राप्त करने का बहुत बड़ा गढ़ था और सारे संसार में जब विद्या प्राप्त हो जाती थी तब अंत में नवद्वीप में आता था सर्टिफाइड होने के लिए। बहुत बड़े बड़े पंडित, सार्वभौम, भट्टाचार्य इत्यादि बड़े बड़े पंडित, वेद वेदांत को जानने वाले वहां पर रहते थे, परंतु भक्ति शून्य, भक्ति कोई नहीं जानता था। और ऐसी स्थिति में उस नवद्वीप में भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के परम भक्त अद्वैत आचार्य रहते थे। ये अद्वैत आचार्य और कोई नहीं, अद्वैत आचार्य शिव जी और भगवान विष्णु के अंश है और इस प्रकट लीला में भगवान के शुद्ध भक्त बने। ऐसी भीषण कलयुग में, ऐसी स्थिति में अद्वैत आचार्य उस नदिया में, उस नवद्वीप में रहते थे और अद्वैत आचार्य के साथ उनके पार्षद, उनके और भी कुछ भक्त, श्रीवास पंडित और श्रीवास पंडित के चार तीन भाई, ये सब लोग नवद्वीप में रहते थे। और नवद्वीप में रहते हुए नवद्वीप की इस दुखमय स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुआ करते थे। सब लोग को प्रचार करते थे कि आप भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण जपिए, हरि बोल बोलिए, परंतु हरि बोल बोलने की बात तो दूर रही, जो लोग हरि बोल बोलते थे उसकी पिटाई करते थे, उस समय मुसलमान का राज्य था और मुसलमान के जो भी राजा थे भगवान का नाम नहीं लेने देते थे और भगवान का नाम लेने पर उनकी पिटाई करते थे। ऐसे समय में अद्वैत आचार्य जो भगवान के परम भक्त, वास्तव में भगवान के जो भक्त होते हैं वे दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं। अद्वैत आचार्य ने देखा कि संसार के लोग दुखी हैं, पाप में और भोगों में फंसे हुए हैं, उनका हृदय बहुत दुखी होता था। भगवान के भक्त दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं और जिसका आसुरी स्वभाव होता है वे दूसरे के दुख को देखकर सुखी होते हैं। आपने देखा होगा रास्ते में कोई जा रहा है और दो तीन लोगों का झगड़ा चल रहा है तो कुछ लोग बहुत आनंद लूटते हैं और मारो और मारो, परंतु भक्त जो होते हैं वे दुखी होते हैं। वे यही सोचते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सब लोग सुखी हो, किसी के जीवन में दुख न हो। तो अद्वैत आचार्य सबके दुख को देखकर, भक्ति विमुख जनों को देखकर बहुत दुखी हुए और दुखी होकर गंगा जल लेकर, गंगा जल शालिग्राम शिला, अद्वैत आचार्य एक शालिग्राम शिला रखते थे, तो गंगा शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी दल रख के और गंगा जल अर्पित करके भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्रभु कृपया करके आप अवतीर्ण होइए, क्योंकि आपके अलावा इस संसार को कोई सुधार नहीं पाएगा, आपके अलावा इस जगत का उद्धार कोई नहीं कर पाएगा। अद्वैत आचार्य प्रयास कर रहे थे, भगवान को प्रणाम कर रहे थे, हम बहुत प्रचार करना चाहते हैं परंतु इस संसार का कोई व्यक्ति हमारी बात सुन नहीं रहा है। प्रभु जब तक आप अवतीर्ण नहीं होगे, जब तक आप नहीं आओगे, तब तक संसार के लोग का उद्धार नहीं होगा। प्रतिदिन अद्वैत आचार्य हुंकार करते हुए, चिल्लाते हुए भगवान को पुकारते थे परंतु भगवान नहीं आते थे। धीरे 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 इस प्रकार से दिन बीतते गए और धीरे धीरे और वहां के पापी लोगों का, दुष्ट लोगों का पाखंड बढ़ता गया। एक समय की बात, अद्वैत आचार्य इत्यादि उनके जो भक्तगण थे एक घर पर कीर्तन कर रहे थे और वहां पर मुसलमान राजाओं को पता चला कि ये लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। उन लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग करके यह निर्णय लिया कि अब कोई व्यक्ति हरिनाम का भजन करेगा उसके पूरे घर को और घर के सारे सामान को तोड़ फोड़ कर गंगा में डाल देंगे, इस नवद्वीप में, इस गांव में रहने नहीं देंगे, भगवान से के भजन करने वाले को मारा जाएगा, पीटा जाएगा। इस प्रकार से ऐसी स्थिति में अद्वैत आचार्य और भगवान के भक्त रह रहे थे। परंतु जब बहुत भीषण स्थिति आ गई तो एक दिन की बात, अद्वैत आचार्य अपनी पूरी मंडली को लेकर एक जगह पर बैठे और बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब हमसे नहीं रहा जा रहा है, अब कृपया करके आप अवतीर्ण हो, कृपया करके आप यहाँ पर आओ और संसार के लोगों का उद्धार करो। जोर जोर से चिल्लाने लगे और अद्वैत आचार्य की हुंकार से भगवान अपने धाम में बैठे थे, गोलोक धाम में भगवान कृष्ण हिल गए। भगवान के भक्त की प्रार्थना को सुनकर निश्चित भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं, पधारते हैं। आप इतिहास खोलकर देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने भगवान को पुकारा है निश्चित भगवान ने दर्शन दिया है। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। द्रौपदी भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया परंतु जैसे ही द्रौपदी ने हे कृष्ण द्वारकावासी पाही पाही जगतपते कृष्ण का नाम लेते ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और द्रौपदी की लाज बचा ली। गजेंद्र एक हाथी ने भगवान को पुकारा तो उसी समय इमीडिएट आचार्यगण लिखते हैं कि गजेंद्र ने जैसे ही ओम नमो भगवते भगवान को याद किया, भगवान वैकुंठ में बैठे थे, भगवान हरि रुक्मणी चामर डुला रही थी, सती मामा पानी परोस रही थी, भगवान सोने के सिंहासन पर बैठे थे, गजेंद्र ने जैसे ही भगवान को पुकारा, हरि को पुकारा, भगवान तुरंत वहां से दौड़े। गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु आप मेरे पर बैठ जाओ, मैं तुरंत आपको पहुंचा देता हूं। भगवान गरुड़ के ऊपर भी बैठने के लिए नहीं खड़े रहे, इतना जंप लगाए। रुक्मणी ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हैं, आचार्य गण लिखते हैं कि भगवान ने हार रुक्मणि के पास कहा और थी हाथी के पास आकर कहा। इतनी तेज गति से भगवान आए हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने में विलंब नहीं करते हैं। नमे भक्ता प्रणश्यति। जिन जिन लोगों ने, नरसिंह मेहता ने, तुकाराम ने, जिन जिन भक्तों ने भगवान को पुकारा है, भगवान निश्चित आए हैं। अद्वैत आचार्य भगवान को पुकार रहे हैं। भगवान ने अद्वैत आचार्य की हुंकार सुन ली और भगवान ने सोच लिया कि अब मुझे नवद्वीप में भक्तों का उद्धार करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए निश्चित रूप से अवतरित होना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा, परंतु भगवान ऐसे वैसे के घर पर जन्म नहीं लेते हैं। भगवान किसी वैष्णव कुल में अच्छे माता पिता के घर पर जन्म लेते हैं। एक बार हमारे गुरु महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा कि आपके भगवान विदेश में प्रवचन कर रहे थे, तो विदेश में रहने वाले, अमेरिका लंदन में रहने वाले व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि आपके कृष्ण इंडिया में ही अवतार क्यों लेते हैं, हमारे लंदन में, अमेरिका में अवतार क्यों नहीं। और ये सत्य बात है, भगवान के जितने भी अवतार हुए इंडिया में, भारत में ही हुए। कृष्ण का अवतार मथुरा में, भगवान राम अयोध्या में, जितने भी अवतार भारत में। तो पूछा कि कृष्ण आपके भगवान का अवतार भारत में ही क्यों होता है, एक अवतार भी हमारे इस विदेश में नहीं हुआ। तब हमारे गुरु महाराज ने इतना ही उत्तर दिया कि देखो, भगवान को अवतार लेने के लिए अच्छे माता पिता की जरूरत होती है, और आपके यहाँ सुबह विवाह होता है, शाम को डाइवोर्स होता है, दूसरे दिन दूसरा विवाह होता है। यहाँ पर माँ और बाप बनने के लायक कोई है ही नहीं। यदि माँ और बाप कोई ठीक से बने, तब जाकर भगवान अवतार ग्रहण कर। ये सही बात है। वहां पर संस्कृति विलीन हो चुकी है और भारत में आज भी सांस्कृतिक लोग हैं। तो भगवान ने ढूंढा कि कौन है जिसके पुत्र के रूप में मैं अवतीर्ण हो। तब वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि उस नवद्वीप में अद्वैत आचार्य के अलावा और भी एक भक्त रहते थे। उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, नवद्वीप आचे जगन्नाथ मिश्रवर। कहते नवद्वीप में एक महान भक्त रहते थे और उसका नाम क्या था, कहते हैं जगन्नाथ। उसका नाम जगन्नाथ और मिश्र उनकी सरनेम थी। नवद्वीप आचे जगन्नाथ मिश्रवर, वासुदेव प्रायते हो सर्वधर्मे ततपर। वे कौन थे, कहते हैं वसुदेव जी, द्वापर युग के वसुदेव ही इस कलयुग में जगन्नाथ मिश्र के रूप में अवतीर्ण हुए। और कैसे थे, कहते हैं सर्वधर्म तत्पर, सभी धर्मों का पालन करने वाले। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र के आविर्भाव में इसी प्रकार लिखते हैं। यहां पर जगन्नाथ मिश्र, वहां पर लिखते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मनी राम, वेद विदित ते ही दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, भक्ति सहित मति सारंग पानी। कहते धर्म धुरंधर, धर्म तत्पर, और भगवान जो धर्म धुरंधर है उसी के घर पर जन्म लेंगे। जगन्नाथ मिश्र सभी धर्मों में तत्पर थे। और उदार चरित्र ते हो ब्रह्मनेर सीमा, हेन नाही जहां दिया करीव उपमा। वृंदावन दास ठाकुर सोच सोच कर थक गए कि जगन्नाथ मिश्र की उपमा किसके साथ दूं। अंत में कहना पड़ा कि जगन्नाथ मिश्र की उपमा देने के लिए और कोई है ही नहीं। यदि कोई होता तो मैं कहता कि जगन्नाथ मिश्र इसके समान है, परंतु इस संसार में कोई ऐसा था ही नहीं। उपमा किसके साथ दूं। की कश्यप दशरथ वासुदेव नंद, सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंद्र। जो अगले जन्म में वसुदेव जी थे, उनके अगले जन्म में कश्यप जी थे, और अगले जन्म में जो दशरथ थे, वही दशरथ, कश्यप और वसुदेव जी कलयुग में जगन्नाथ मिश्र के रूप में अवतीर्ण हुए। और ऐसी जगन्नाथ मिश्र की पत्नी थी, और उस पत्नी का इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं,
तान पत्नी शची नाम महापतिव्रता, तान पत्नी शची नाम महापतिव्रता, मूर्तिमयी विष्णु भक्ति से जगन माता।
तान उस जगन्नाथ मिश्र की एक पत्नी थी, नाम क्या था कहते हैं सची देवी, और गुण क्या था कहते हैं पतिव्रता। तान पत्नी सची देवी गुण पतिव्रता, पतिव्रता थी, जो पति के लिए व्रत लेकर बैठी हैं, पति जो कहते हैं वही करती हैं, पति के नीति के अनुसार चलती हैं, उसे पतिव्रता कहा जाता है।
जगन्नाथ मिश्र की जो पत्नी थी सची, वे अपने पति की सेवा करने वाली थी, सेवा परायण थी।
जो पति की सेवा करे, पति के कहने के अनुसार ही, पति के मन की इच्छा को जानकर पति की सेवा करे, उसे पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस कलयुग में ऐसी पतिव्रता नारी की संख्या बहुत कम है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं पतिव्रता नारी बहुत कम मिलेगी, परंतु पत्नी व्रता प्रभु बहुत मिलेंगे।
ऐसी स्त्री जो अपने पति के उपदेश का पालन करती है वैसी बहुत कम मिलेगी, परंतु ऐसे पुरुष जो अपनी पत्नी के अनुसार चलते हैं वैसे बहुत मिलेंगे।
कहते हैं कि तीन प्रकार की पत्नी होती हैं। पत्नी एक तो वाइफ पत्नी और धर्म पत्नी। धर्म पत्नी उसे कहा जाता है जो धर्म के अनुसार पति के नीति के अनुसार चले, इसे धर्म पत्नी कहा जाता है। और केवल पत्नी उसे कहा जाता है कि अपने पति की सेवा तो करे, परंतु जैसे ही बेचारे पतिदेव सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं तो पूरा लिस्ट हाथ में थमा देती है, मेरे लिए ये साड़ी लेकर आना, ये नेकलेस लेकर आना, बच्चों के लिए ये 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 इतना लेकर आना। और शाम को जब पतिदेव थके मांदे घर पर आते हैं तो पहले यह पूछती है कि मैंने जो मंगाया था वो लाए हो। इसे पत्नी कहा जाता है। और कुछ वाइफ, वाइफ किसे कहते हैं, पत्नी पति मोटर बाइक के ऊपर बैठे और कीक मारे और जंप लगाकर पीछे बैठ जाए, उसे वाइफ कहते हैं। जिसे बोलने की कोई शिस्त नहीं है, अपने पति का नाम लेकर जो बुलाती हैं कि ये हमारे मिस्टर हैं, मिस्टर तक भी ठीक है, लेकिन नाम लेकर कहते हैं ये कौन है, हम पूछते हैं कि आपके साथ ये कौन है, कहते ये अमित है। आर्यव्रत की संस्कृति है कि आर्यव्रत की नारी कभी अपने पति का नाम नहीं लेती है, परंतु आज सारी पत्नियां अपने पति का नाम से पुकारती हैं, ये हमारे मिस्टर है, ये अमित है, और बड़े बड़े लोगों के सामने नाम लेकर बुलाती है। वास्तव में ये पतिव्रता पत्नी नहीं है। आप देखिए जगत की आर्य नारी को, आप देखिए देवी सीता। अब त्रेता युग में चलिए, देवी सीता जब राम लक्ष्मण और जानकी वनवास में गए और अलग अलग गांवों से गुजरते हुए जाते थे, किसी गांव में जब रुकते थे तो सीता स्त्रियों के साथ बैठती थी और राम और लक्ष्मण पुरुषों के साथ बैठते थे। रामायण में वर्णन है कि एक बार उस भिलनियों ने, उस स्त्रियों ने सीता को पूछा कि देवी देवी आपके साथ ये दोनों सुंदर पुरुष हैं, वे कौन हैं? सीता को पूछा। आज मान लीजिए किसी भी स्त्री को पूछा जाए कि ये कौन है, तुरंत कह देंगे ये अमित है, हमारे हस्बैंड। परंतु आर्यव्रत की जो नारी है, देखिए देवी सीता क्या उपदेश देती हैं। पूछा गया सीता को कि वे कौन हैं, तो सीता ने क्या कहा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। पूछा गया कौन है ये, तो सीता ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि ये हमारे पति हैं, पहले कहा कि वो जो गोरे गोरे हैं, वे हमारे देवर हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और हमारे देवर हैं। और अपने पति के ऊपर उनकी दृष्टि नहीं गई, जैसे देवर कहने के बाद अपने पति के ऊपर दृष्टि गई तो उन्होंने घूंघट तान लिया और तान कर इतना ही कहा कि उनके बाजू में जो बैठे हैं वो हमारे वो है, बस हो गया, समझ गए सब लोग। ये है मर्यादा, ये है पतिव्रता स्त्री। तो यहाँ पर जगन्नाथ मिश्र की एक पत्नी थी जिनका नाम सची देवी था और वे पतिव्रता थी। इतना ही नहीं, मूर्तिमयी विष्णु भक्ति सही जगन माता जगत जननी, माता के समान मूर्तिमयी भगवान की भक्ति का स्वरूप ही था। भगवान की भक्ति करने में प्रवर, भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप ही देवी सच्ची का था। बहु कन्या पुत्रे हयल तिरो भाव, जगन्नाथ मिश्र और सच्ची देवी का विवाह हुआ, बहुत समय बीत गया, समय बीता और धीरे धीरे करके संतान उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि देवी सच्ची के गर्भ से 8 पुत्री का जन्म हुआ, परंतु जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो गई। बहु कन्या पुत्रे हयल तिरो भाव, सभे एक पुत्र विश्व रूप महाभाग। और 8 कन्या का तिरुभाव होने के बाद सच्ची देवी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र और कोई नहीं, जैसे भगवान श्री कृष्ण को आना था तो कृष्ण कैसे आए, कृष्ण के पहले उनके बड़े भाई बलदेव जी का अंश, बलदेव जी विश्व रूप के रूप में प्रकट हुए। सच्ची देवी के गर्भ से जो बालक प्रकट हुआ उनका नाम हुआ विश्वरूप, और ये बलदेव जी के अवतार थे। और विश्वरूप कैसे थे, कहते हैं जन्म से ही विरक्त भगवान के भक्त थे और भगवान में स्वाभाविक उसकी जन्मजात रति और मति थी। धर्म तिरो भाव है ले प्रभु अवतरे, जब बलदेव जी का जन्म हो गया तो भगवान ने सोचा कि अब समय आ गया है, अब समय निकट आ गया है, अब मुझे अवतार लेना होगा, क्योंकि मैं अवतार नहीं लूंगा तो इस कलयुग के जीव का क्या होगा। कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं को आनंद देने के लिए, हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति का दान करने के लिए सोचने लगे, सोचने लगे कि कलयुग में विनाश हो रहा है, इसलिए मुझे अवतीर्ण होना होगा। तब चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सर्वप्रथम जगन्नाथ मिश्र के मन में अवतीर्ण होते हैं। भगवान हमारी तरह किसी रज और वीर्य के विकार नहीं है। संसार में हमारा जन्म रज और वीर्य से होता है, भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता है। पहले ही कहा गया जन्म कर्म दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। तो भगवान सबसे पहले जगन्नाथ मिश्र के मन में आए, जगन्नाथ मिश्र के मन से सची देवी के मन में गए और सची देवी के मन से सची देवी के हृदय में गए। भगवान कभी किसी के पेट में नहीं होते हैं, उस गंदी हवाओं के बीच में, गंदे जगह में भगवान नहीं रहते हैं, भगवान हृदय में रहते हैं। भागवत खोलकर देख लीजिए, सुखदेव गोस्वामी भी इस बात को कहते हैं कि कृष्ण देवकी के हृदय में प्रकट हुए, भगवान हृदय में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु सची देवी के हृदय में आए और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जैसे सची देवी के हृदय में भगवान अवतरित हुए तो कहते हैं महातेज मूर्ति हई लेन दुई जने तथापि लखी तेना पारे अन्य जने। जैसे भगवान, भगवान में तो अनंत अद्भुत तेज है। गीता में भगवान कहते हैं मेरा धाम कैसा है, न शशांक न पावक, मेरा धाम ऐसा है जहां पर लैंप की और ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं है, जहां पर सूर्य की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा धाम स्वयं प्रकाशित है। भगवान के शरीर से अनंत अनंत तेज निकलता है। भगवान के तेज का क्या वर्णन किया जाए, गीता में भगवान कहते हैं तेजस तेजस विनाम तेजो में भी मैं तेज हूं। और भगवान के तेज की बात, आप सूर्य को देखते हो, प्रतिदिन हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य के सामने हम आंख खुली करके नहीं देख सकते हैं। सूर्य में अनंत तेज है, जब सूर्य उदित होता है हजारों हजारों कपड़े को सोख देता है, हजारों हजारों लोगों को पोषण करता है, कितना विद्युत देता है। सूर्य में अनंत अपार असीम तेज है। यह तेज क्या है? कहते हैं यह सूर्य का तेज भगवान के सुदर्शन चक्र का 1000वां हिस्सा, एक छोटा सा स्फुलिंग मात्र है। भगवान के सुदर्शन चक्र में जो तेज है उस तेज का एक स्फुलिंग है यह सूर्य। और भगवान के सुदर्शन चक्र का तेज क्या है? कहते हैं कि भगवान के उस दिव्य विग्रह के नाखून का, के पग के, चरण के, अंगूठे के जो नाखून है, वह छोटा सा नाखून में जो तेज है उस तेज का एक छोटा सा स्फुलिंग, छोटा सा हिस्सा उस चक्र में आया है। कल्पना कीजिए भगवान में कितना तेज होगा। भगवान का एक छोटा सा तेज, वो भी नाखून का छोटा सा तेज चक्र में आया, चक्र का छोटा सा तेज सूर्य में आया, भगवान में कितना तेज होगा। और ऐसे तेजोमय भगवान जिसके गर्भ में आ गए हैं, जिसके हृदय में आ गए हैं, उस माता का तेज कितना बढ़ गया होगा। सूर्य को किसी कपड़े में बंद कर दो, क्या उसका तेज छिपा रहेगा? कभी नहीं। द्वापर लीला में भी आप देखिए, देवकी अपने सात सात पुत्रों की मृत्यु में बहुत दुखी थी, शोक मग्न थी, परंतु जैसे ही भगवान आए तो आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई। कंस भी चक्कर में पड़ गया कि निश्चित विष्णु इसके गर्भ में आ चुका है। भगवान आए, सची माता तेजस्वी हो गई, परंतु फिर भी सची को और जगन्नाथ मिश्र को पता नहीं चला कि वास्तव में ये कौन आया है, भगवान है कौन है। और जैसे ही सची देवी के गर्भ में भगवान अवतीर्ण हुए, उस समय इस संसार के सभी देवी देवता भगवान को स्तुति करने के लिए आए। भक्तों, भगवान जब जब इस संसार में अवतीर्ण होते हैं, जन्म लेते हैं, तब जन्म लेने से पहले सभी देवतागण उसे स्तुति करते हैं। यहां पर एक दिन की बात, जगन्नाथ मिश्र और सची देवी सो रहे थे और उसी समय सभी 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा और शिव जी समेत, इंद्र समेत सब लोग भगवान की गर्भस्थ स्तुति करने के लिए आए। और स्तुति कैसी है, वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं। जय जय महाप्रभु जनक सभार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार। कहते हैं जय जय महाप्रभु जनक सभार। हे महाप्रभु, आप इस संसार के, इस सकल संसार के जनक हो। और जय जय संकीर्तन हेतु अवतार, और आपका अवतार संकीर्तन भगवान के नाम का उपदेश देने के लिए हुआ है। जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय भक्त मर्दन महाकाल। हे प्रभु, सभी देवतागण ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपका जन्म वेदों की रक्षा करने के लिए, आपका जन्म धर्म की रक्षा करने के लिए, आपका जन्म साधु विप्र और गायों की रक्षा करने के लिए होता है।
जय जय सर्व सत्य मय कलेवर, जय जय इच्छा मय महामहेश्वर।
हे प्रभु, आप सत्य हो, आपका स्वरूप सत्य है, आपकी वाणी सत्य है, प्रभु क्या बताऊं, आपका सब कुछ सत्य है। ब्रह्मा जी जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो सत्य बोल बोल कर थक जाते हैं, क्योंकि भगवान का सब कुछ सत्य है। इस संसार में सब कुछ झूठा है, सब कुछ मिथ्या है, सत्य यदि कुछ है तो है भगवान। इसलिए भागवत के प्रारंभ में ही वेद व्यास जी को लिखना पड़ा, सत्यम परम धीमहि। हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं, हम वसुदेव नंदन वासुदेव को प्रणाम करते हैं जो सत्य है। तो भगवान सत्य है, भगवान का सब कुछ सत्य है।
जे तुम्हें अनंत कोटी ब्रह्मांडेर वास ते तुम्ही श्री सची गर्भे करीला प्रकाश।
देवताओं की अद्भुत प्रार्थना है। कहते हैं कि जिस भगवान के रोम कूप से अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जिसके बाले बाले ब्रह्मा प्रकटे, जिसके बाल बाल पे रोम कूप पे ब्रह्मांड प्रकटते हैं, वैसे भगवान सची देवी के गर्भ में है। भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है।
तोमार इच्छाए के बुझीते तार पात्र सृष्टि स्त्री प्रलय तोमार लीला मात्र।
हे प्रभु, आपकी इच्छा से ही संसार में सृष्टि होती है। आप ही संसार के सृजनहार हो, आप ही संसार को चलाने वाले हो, और प्रभु आप ही संसार का प्रलय करने वाले हैं। बहुत बहुत स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु आप सतयुग में हंस रूप में अवतरित हुए, त्रेता युग में यज्ञ के रूप में अवतरित हुए, द्वापर युग में स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होंगे। और प्रभु आप इस युग में अवतरित होकर हरि नाम का प्रवर्तन करोगे, हरि नाम की शिक्षा दोगे। ऐसे प्रभु हम आपको बारंबार बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार देवतागण बहुत बहुत स्तुति किए, और स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि बस अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म की तिथि, जन्म का समय बहुत निकट आ गया है। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, तब तक भगवान जन्म नहीं लेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी, शिव जी सभी देवताओं को लेकर वहां से निकल गए। और जब ये सब लोग निकल गए, तब वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं,
सची गर्भे वैसे सर्व भुवने रवास फालगुनी पूर्णिमा आसी है ना प्रकाश।
फाल्गुन महीना आ गया है, पूर्णिमा की रात्रि आ गई है, संध्या का समय निकट है। और जैसे ही संध्या का समय निकट आया, वे वर्णन करते हैं कि अनंत ब्रह्मांड, जिसके अंदर अनंत ब्रह्मांड है, वे भगवान जैसे ही जन्म लेने की इच्छा प्रकट किए, सभी ब्रह्मांडों में सुमंगल छा गया। कई कई वर्षों से सब लोग दुखी होकर रहते थे, दुखी पड़े रहे थे, वे सब लोग सुखी हो गए। और उस दिन आश्चर्यमय घटना कि उसी दिन चंद्र ग्रहण लगा। चंद्र को ग्रसित करने के लिए राहु चंद्र के पीछे लगा, और चंद्र एक ओर भगवान के जन्म की तैयारी, और दूसरी ओर चंद्र ग्रहण होने के कारण सब लोग उस गंगा नदी में स्नान करने जा रहे हैं। एक ओर महाप्रभु के जन्म की तैयारी, एक ओर स्नान की तैयारी। वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के डर से सब लोग गंगा में स्नान करने लगे, और गंगा में स्नान करते करते सब लोग हरी बोल का उच्चारण करने लगे। सब लोग के मुख से हरी ध्वनि निकलने लगी। जो लोग अपने जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिए थे, चंद्र ग्रहण के डर से सब लोग अपने मुख से भगवान का नाम लेने लगे। इनाम दास ठाकुर वर्णन करते हैं,
सर्व नव द्वीपे देखे हईल ग्रहण उठिल मंगल ध्वनि श्री हरि कीर्तन। सर्व नव द्वीपे देखे हईल ग्रहण उठिल मंगल ध्वनि श्री हरि।
सर्व नव द्वीप में ग्रहण होने के कारण सबके मुख में भगवान का नाम आ गया और हरि का कीर्तन करने लगे।
अनंत अर्बुद लोक गंगा स्नान जाय हरि बोल सभी भले जाय।
अनंत अर्बुद लोग, अर्बुद का अर्थ होता है अरबों लोग। कहते अनंत अनंत लोग कोई भी ऐसा नहीं था जो भगवान का नाम नहीं ले रहा था, प्रेम से नहीं, ऐसा नहीं कि भगवान की ओर प्रेम उमड़ पड़ा, प्रेम से नहीं, डर के कारण, चंद्र ग्रहण होने के कारण सबके मुख में हरि ध्वनि और सब लोग गंगा का स्नान करने के लिए जाने लगे।
है न हरि ध्वनि है न सर्व नदियाय, ब्रह्मांड पुरिया ध्वनि स्थान नहीं पाया।
है न हरि ध्वनि, भगवान की ध्वनि, भगवान का नाम सब लोग लेने लगे और गंगा के तट पर इतना मेला छा गया, गंगा में स्नान करने के लिए जगह नहीं रही। जैसे कुंभ मेले में हजारों हजारों लोग स्नान करने के लिए निकल पड़ते हैं, पूरे साल में जो ऋषि मुनि साधु संत दिखते नहीं है वैसे लोग कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आ जाते हैं। वैसे लोग जो अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिए थे, आज सब लोग भगवान का नाम लेने लगे और सब लोग के मुख में हरि ध्वनि, हरि बोल, हरि बोल। सर
अपूर्व सुनिया सब भागवत गण, सबे बोले निरंतर हउ गण।
जब सब लोगों के मुख से हरि ध्वनि आने लगी, जो लोग कभी भगवान का नाम नहीं लेते ऐसे लोगों के मुख से हरि ध्वनि जब भगवान के भक्त सुनने लगे, तब भगवान के भक्तों ने सोचा, वहाँ के जो भक्त थे उन लोगों ने सोचा कि लगता है रोज ग्रहण होना चाहिए ताकि रोज भगवान का नाम ले। ये लोग बिना ग्रहण के भगवान का नाम नहीं लेंगे।
गंगा स्नान चली ले न सकल भक्त गाना, निरवधि चतुर्दी के हरि संकीर्तन।
सब लोग गंगा के स्नान, गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, सब लोग के मुख में एक ही ध्वनि, हरि बोल, हरि बोल।
की बा शिशु वृद्ध नारी सज्जन दुजन, सबे हरि हरि बोले देखिया ग्रहण।
केवल बड़े नहीं, बड़े छोटे वृद्ध बालक सब लोग हरि बोल की ध्वनि करने लगे। इस प्रकार सब लोग के मुख में केवल हरि बोल की ध्वनि।
निताय गोर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
नदिया में रहने वाले लोगों के साथ हम भी हरि बोल की ध्वनि करें, जैसे नदिया में अवतार हुआ वैसे इस सोलापुर में भी होना चाहिए।
हाँ, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
सभी देवतागण आकाश में आ गए। 33 करोड़ देवी देवता आकाश में आए, पुष्प की वृष्टि करने लगे। अप्सरा नाचने लगी, गंधर्व शंख नगाड़े पखावज तुरही शहनाई बजाने लगे और सब लोग के मुख में एक ही ध्वनि,
नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
नीता गौरा हरि बोल, हरि बोल। देवताओं नाचने लगे, गंधर्व गाने लगे, फूलों की वृष्टि करने लगे। और उस समय भगवान ने अवतार लेने के लिए सोचा, ठीक शाम को संध्या के समय फाल्गुन महीना पूर्णिमा का दिन, जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, जैसे अंधकार में पूर्ण कला को लेकर चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे सिंहनी के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे छची माता के गर्भ से चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। बोलो चैतन्य महाप्रभु
की,
चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
महाप्रभु का जन्म हुआ है, सब लोग प्रेम से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
प्रेम से
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जन्म हुआ है। बहुत सुंदर सांवला स्वरूप है, गौरांग स्वरूप है, सुंदर छवि है। और सब नदिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, उनका दर्शन करने के लिए आए। जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन किया गया, दान दिया गया, और सब लोग सुंदर सुंदर भेंट लेकर आने लगे और एक ही चीज गाने लगे। क्या गाए? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, नवदीप में जो वातावरण था वही वातावरण यहीं पर है, परंतु एक कमी है, पूरी करना है, पूरी करोगे? बजा रहे हैं, गा रहे हैं, परंतु नाच नहीं रहे हैं। तो कमी पूरी कर दीजिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे
कृष्ण